ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नो मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनि लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ದೂಸರಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ इसका दूसरी प्रतिमा संबंधित जितने 12 व्रत हैं इनका वर्णन जिनागम प्रवेश में भी किया है। पुस्तक जिनागम प्रवेश का सबके पास है, पेज नंबर 70-68 प्रकरण ही है, श्रावकाचार एवं श्रमणाचार। इस प्रकरण को पढ़ सकते हैं, स्वरूप समझ सकते हैं। हाँ, व्रत प्रतिमा किसे कहते हैं, 206 पेज पर है। दर्शन प्रतिमा का पालन करते हुए निश्चल्य होकर 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत का पालन करना व्रत प्रतिमा है। इस प्रतिमा का धारी श्रावक व्रती कहलाने लगता है। व्रती कहलाने लगता है। व्रतों को लिए बिना पंचम गुणस्थान की प्राप्ति नहीं होती। पहली प्रतिमा में ऐसे कोई व्रत नहीं होते, दूसरी प्रतिमा के साथ ही व्रतों का प्रारंभ होता है। दूसरी प्रतिमा को लेने से ये व्रतों की अपेक्षा से तो ये व्रतों की प्रथम सीढ़ी ही कहना चाहिए। पंचम गुणस्थान में प्रवेश करने वाला जीव दूसरी प्रतिमा से ही प्रवेश करता है और इस प्रतिमा का या शेष प्रतिमाओं का जो बेस है, फाउंडेशन है, वह दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा को भी यदि कोई ग्रहण कर ले तो शुद्ध भोजन करना, पानी छान के उपयोग में लेना, ये आदि व्रत प्रतिमा में किए जाने वाले सारे कार्य, व्रत संबंधित जो भी नियम हैं उनका अभ्यास के रूप में पालन करने लगता है। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि प्रथम प्रतिमा लेने मात्र से पंचम गुणस्थान हो जाए, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि व्रत तो व्रत है, व्रतों का प्रारंभ दूसरी प्रतिमा से ही होता है। यहां 12 जो अनुव्रत हैं दूसरी प्रतिमा में उनका स्वरूप समझेंगे। अनुव्रत किसे कहते हैं और कितने होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना अनुव्रत कहलाता है। अनुव्रत 5 होते हैं, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाणानुव्रत। अहिंसानुव्रत का लक्षण बताया है, संकल्प पूर्वक। देखो संकल्प हिंसा आ गए, कल बताया था वही, संकल्प पूर्वक त्रस जीवों का घात मन वचन काय से नहीं करना, और निष्प्रयोजन स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करना, ये व्रत प्रतिमा कहलाती है, अहिंसा अनुव्रत कहलाता है। अहिंसा अनुव्रत क्या करना, संकल्पी हिंसा का ही केवल त्याग करना है। हिंसा कितनी प्रकार की बताया था, चार प्रकार की, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। इन चार प्रकार में से एक प्रकार की हिंसा का यहाँ त्याग कराया जाता है, संकल्पी हिंसा। तो संकल्पी हिंसा का तात्पर्य क्या है, बताया था ना, हाँ, किसी भी त्रस जीव को ये हम बचा सकते हैं और नहीं बचा पा रहे हैं, जानबूझ करके हिंसा नहीं करना, बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए, बचाना ही धर्म है, और यही धर्म अहिंसा अनुव्रत है, इससे भी पंचम गुणस्थान बनता है। जैसे घर है, दीवाल है, कोई स्थान है, कोई बर्तन है, कोई चीज है, साफ कर रहे हैं तो वहाँ पर जीव है क्या नहीं, ये देखना चाहिए। जीव यदि है तो प्रमाद नहीं करना चाहिए, सीधा उनको पहले जैसे भी हो सके उनकी रक्षा करना चाहिए, झाड़ू बोहरी से उसको दूर करके उनकी रक्षा करने के साथ साथ आप घर की सफाई वगैरह करेंगे, ये संकल्पी हिंसा का त्याग कहलाता है। इसी प्रकार से जब अपने को लगता है कि हम इसमें से जीव बचा सकते हैं, अनेक कार्य करते हैं आप, उन कार्यों के काल में इन जीवों को बचा सकते हैं ऐसा लग रहा है, तो बचाना कर्तव्य हो जाता है। जहाँ बचा नहीं पाते वो बात अलग है। दूसरी प्रतिमाधारी खेती भी करता है, हल भी चलाता है, औषधि भी मारता है, फसल निकालने की कोशिश भी करता है, किंतु उन जिन जीवों को बचाना संभव नहीं, उन जीवों को वो बचा नहीं सकता, चाहे भले ही त्रस हो, किंतु जहाँ पर बचाना संभव है उतना बचा करके काम करेगा, ये उसके संकल्पी हिंसा का त्याग रूप व्रत कहलाता है, यह जगन्य पंचम गुणस्थान कहलाता है। जगन्य पंचम गुणस्थान को भी यदि हम अच्छी तरह से पालन करते हैं तो भी हमारे संसार के भव कट जाते हैं, कम से कम तीन भव और ज्यादा से ज्यादा आठ भव के माध्यम से मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। देखो व्रतों का कितना मूल्यांकन है, जरा भी हम जीवन में से प्रमाद छोड़कर जीवों की रक्षा के पीछे लग जाते हैं तो कितना बड़ा लाभ है। आज पंचम काल में महाव्रती मुनि भी कम से कम तीन भव और अधिक से अधिक आठ भव से ही मोक्ष जाते हैं, और आज कोई श्रावक दूसरी प्रतिमा का भी पालन कर ले तो वह भी कम से कम तीन भव और अधिक से अधिक आठ भव में मोक्ष जा सकता है। ये व्रतों की महिमा है, महाव्रतों की जितनी महिमा है लगभग उसी उतनी ही महिमा अनुव्रतों को भी हुआ करती है। इसलिए कहा जाता है व्रत चाहे महान हो चाहे छोटा हो, व्रत कभी भी छोटे बड़े नहीं होते, व्रत तो व्रत होते हैं, उनका परिणाम बहुत अच्छा ही रहता है और मीठा ही रहता है। अनुव्रतों को अनुव्रत नहीं समझना, महाव्रत के समान वे भी, क्योंकि संकल्पी हिंसा का त्याग आपने अखंड जीवन में किया है, जीवन पर्यंत के लिए किया है, तो उस अहिंसा का पालन करने से भी हमारे लिए बहुत कुछ लाभ है। ये अहिंसानुव्रत है। सत्यानुव्रत देखिए, स्थूल झूठ का त्याग सत्यानुव्रत कहलाता है। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे कि किसी किसी को आपत्ति आ जाए। कहीं कहीं तो ये प्रसंग आ जाता है गवाही देने के लिए कोर्ट में अटेंड होना पड़ता है। हालांकि वह सभी नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसे प्रसंग संसारी जीव को आ जाते हैं, तो उस काल में सोचना चाहिए एक व्रती हो गवाही दे रहा है और यदि वह सत्य बोलेगा, सत्य बोलने से यदि किसी का आघात हो सकता हो तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए और ऐसा असत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिस असत्य के बोलने से जीव का घात हो सकता हो, तो ऐसा असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। तो कैसे वचन बोलना चाहिए? तुम सत्य बोलो या असत्य, दोनों बोल सकते हो, किंतु जीव का हित होना चाहिए। हित होने के पक्ष में चाहे आप सत्य बोलते हैं चाहे असत्य बोलते हैं तो वो धर्म की कोटि में ही आता है। तो ऐसे वचनों को बोलना ये अहिंसा अनुवृत्ति के लिए आवश्यक बताया। कैसे बोलेंगे? विवेक से बोलेंगे। पहला परिणाम क्या देखा जाता है? पहला परिणाम ये देखा जाता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है, लेकिन इस सत्य के बोलने पर उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखकर बोलना चाहिए। जैसे बातों बातों में घर में झगड़ा होता है और माँ बाप बच्चों को कुछ भी बोल देते हैं तो सोच विचार करके कहाँ बोला जाता है? प्रमाद में जब रहते हैं तो अधवा तधवा बोल जाते हैं, तो बोलने से वो ठेस लग जाता है, तो कोई कोई जा करके आत्महत्या कर लेते हैं कि नहीं? बच्चे अब तक आत्महत्या कर लेते हैं, हमारे माता पिता ने ऐसा कहा तो मेरे लिए अब कैसा जीना, ये जीवन जीना बेकार है कह करके आत्महत्या के लिए परिणाम बन जाते हैं। तो ऐसा वचन भी नहीं बोलना जिन वचनों को सुन करके दूसरे के लिए आत्महत्या के भाव हो जाए, ये असत्य वचन की कोटि में आता है। दूसरे को हितकारक वचन बोले, उसको मीठा लगे, उसका जीवन बने, उसको वो आनंद से भर जाए, उसके लिए ज्ञान मिल जाए, उसके लिए जीवन मिल जाए, उसके लिए संस्कार मिल जाए, ऐसे वचनों को बोलना ये सत्यानुवृत्ति श्रावक का कर्तव्य होता है। और प्रमाद छोड़ करके सावधानी के साथ यदि वचन वर्गनाएं मुख से हम निकालते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे का हित होगा ही होगा। हितकारक वचन बोलेंगे तो बोलते समय किसी भी प्रकार से सत्य अनुवृत्ति में दोष लगने वाला नहीं है, ऐसे वचन बोलना ये सत्यानुवृत्ति। ब्रह्मचर्यानुवृत्ति, अचौर्यानुवृत्ति, स्थूल रूप से चोरी का त्याग करना अचौर्यानुवृत्त कहलाता है। स्थूल चोरी का त्याग, अब देखो दूसरी प्रतिमा अगर कोई श्रावक लेता है तो वह व्यापार उद्योग धंधा खेती कितने प्रतिमाओं तक कर सकता है? 7 प्रतिमाओं तक कर सकता है। 8वीं प्रतिमा में आरंभ त्याग हो जाता है। तो स्थूल आरंभ यानी मुख्य रूप से जीवन आदाय के जो स्रोत खेती उद्योग व्यापार आदि होता है वह बंद हो जाता है। खेती 7वीं प्रतिमा तक कर सकता है। तो यहां स्थूल रूप से चोरी का त्याग करना अचौर्यानुवृत्त कहलाता है। तो दुकान भी करेगा, दुकान में बैठे बैठे जरा झूठ भी बोलेगा, हाँ लोभ का उदय रहता है, प्रत्याख्यानावरणी कषाय, ये लोग असयमदायक तो है ही, सर्वघाती है, किंतु अनुवृत्त के लिए कोई घातक नहीं है। एक और महाव्रत के लिए वो सर्वघाती कहलाता है प्रत्याख्यानावरणी कषाय, और एक और अनुवृत्त के लिए घातक नहीं है। अतिचार आदि दोष अवश्य लग सकते हैं, किंतु निर्दोष पालन करने वाला निर्दोष पालन करना चाहता है तो यहाँ पर केवल स्थूल चोरी को छुड़ाया जा रहा है, सूक्ष्म चोरी को नहीं छोड़ाया जा रहा है। कैसे पालन करना? तो स्थूल में जो बड़े बड़े बड़ी चोरी, जैसे वहां आठ मूल गुण में भी स्थूल अचौर्यानुवृत कहा था, वहां पर अपनी ईमानदारी से कमाना, ईमानदारी से कमा करके संतोष वृत्ति से जीवन जीना, संतोष रखना, संतोष गुण को लाने का प्रयत्न वहां पर मूल गुणों में किया गया था। यहां पर क्या कराया जा रहा है? यहां पर आपको जो ये समझ में आता है कि ऐसा मैं इस वस्तु को लेऊंगा तो चोरी का दोष आएगा और इस चोरी से दूसरे को दुख हो सकता है और ज्यादा ज्यादा ही दुख होगा, तो उस चोरी को नहीं करना। जैसे किसी के वस्तु को बिना बताए उठा के लाए और कीमती वस्तु है और उस वस्तु के बिना उसका जीवन नहीं चल सकता है और फिर भी आपने उठा करके लाए तो क्या होगा? सामने वाले के जीवन पर समस्या आएगी। आठ मूल गुणों में तो ये छुड़ाया था कि आप चोरी बन करके डाका डाल करके जीवन नहीं जियोगे, चोरी ही तुम्हारा व्यवसाय नहीं रहेगा, उसको छुड़ाया था। और यहां पर क्या छुड़ाया जा रहा है? यहां पर ये छुड़ाया जा रहा है कि तुम तो, तुम्हारा जीवन तो चोरीमय नहीं है, चोरी करना तुम्हारा व्यवसाय नहीं है, लेकिन किसी वस्तु को किसी संदर्भ में उसको लेऊं, इस प्रकार के परिणाम हो सकते। कैसी वस्तु? जो मेरा जीवन तो चल सकता है लेकिन दूसरे का जीवन नहीं चल पाएगा, दुखी हो जाएगा। तो ऐसी स्थूल जो वस्तु होती है, मोटी वस्तु, छोटी मोटी नहीं, मोटी मोटी वस्तु, रिश्वत, बहुत नहीं, देखो बहुत बड़ा रिश्वत ठीक नहीं, यहां पर स्थूल रिश्वत को छुड़ाया जा रहा है, छोटी छोटी रिश्वत नहीं, हाँ, टैक्स वगैरह, हाँ, बराबर, स्थूल चोरी में लिया जाएगा, पर सरकार ही चोर हो तो, हाँ, बिल्कुल, नागरिक भी सुशील हो और नायक भी सुशील हो तब तो ये कानून टैक्स वाले ठीक हैं, किंतु नागरिक भी वही और तो फिर कानून कैसे बनेंगे? अद्वैत अद्वा कानून बनेंगे? एकदम एकांत से हम उसको भी नहीं अपना सकते, उसमें विवेक के साथ ही चलना पड़ता है। होता ही है, भ्रष्टाचारी है वो, ठीक है, अपने को इतना सोचना है कि अपने अनुवृत्तों में दोष ना आ जाए और अपना जीवन चले, संयमपूर्ण जीवन जीना है और संयममय जीवन के लिए कुछ व्यवहार भी करने पड़ते हैं, लेन देन वगैरह होती है, तो टैक्स जहां जितना देना है देना ही पड़ता, उसके बिना तो कुछ काम चलता नहीं। अपने को तो स्थूल पाप का त्याग करना है, बहुत बारीकी से भी नहीं देखना, प्रारंभ में दूसरी प्रतिमा में बहुत बारीकी से देखने लग जाओगे तो श्रावक अवस्था में रहकर दूसरी प्रतिमा का पालन कभी संभव नहीं, तो फिर तो मुनि ही बनना पड़ेगा। आपको कितना करना है ये समझाया जा रहा है, आप कितना कर सकते हैं आपकी भूमिका में व्रत दिए जा रहे हैं, आपकी भूमिका क्या है और आप क्या कर सकते हैं, उतने करने का मार्गदर्शन प्रतिमाओं के माध्यम से मिल रहा है। क्योंकि यह परिग्रहमय जीवन है, पंच पापमय जीवन है, इन्हीं पंच पापों में से मैं कितना पापों से बच सकता हूँ, सवाल ये है। जितना आप बचते हैं वो अनुरथ है। जहां ये लगता है आपको कि इससे हमको बचना संभव है, उतना बचना चाहिए। और इससे बच नहीं सकता क्योंकि मेरा जीवन भी सांसारिक है और सांसारिक जीवन जीने के लिए इससे बचना असंभव है, तो कोई भी चीज हो उससे बचने का कोई उपदेश नहीं है, वो आवश्यक समझा जाएगा। चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो परिग्रह हो, उसको तो आवश्यक समझा जाएगा। तो इस तरह से विवेक पूर्वक इन व्रतों को अपने जीवन के स्तर पर स्वीकार करके, धारण करके पालन करना होता है। सबका जीवन अलग अलग है, सबके जीवन की परिस्थितियां एक सी नहीं होती, और एक सी नहीं होती है इसलिए श्रावक धर्म का उपदेश हुआ है। उनके स्तर पर जितना वो हिंसा का त्याग करेगा, चोरी का त्याग करेगा, झूठ का त्याग करेगा, वो व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में वो पंचम गुणस्थान है। वही जीवन किसी दूसरे श्रावक के लिए हो सकता है, उनके लिए बहुत सारी बातें अनुकूल हों तो बहुत अच्छी तरह से वो पालन करेगा। बहुत सारी बातें अनुकूल हों व्रतों को पालन करने के लिए तो उनके स्तर पर अनुव्रतों का पालन जरा उत्कृष्ट रूप से होगा। जिनको कि व्यवसाय, व्यापार, उद्योग इत्यादि कम करने पड़ते हैं तो पाप भी कम होगा। लेकिन सभी पाप, सभी जीव, सभी व्यक्ति कम कर सकते हैं ऐसी बात नहीं। अपनी सांसारिक परिस्थितियों में रहते हुए ही मैं क्या कर सकता हूं अपने क्षेत्र में, वो सोचता है, और उसको संकल्पी हिंसा का त्याग पूर्वक, पंच पापों को मैं संकल्प पूर्वक नहीं करूंगा, इस प्रकार स्थूल अपने क्षेत्र में अपने जीवन के पापों को समझकर उस त्याग करता जाता है। धीरे धीरे वह अनुव्रत से महाव्रत की ओर बढ़ने वाला है। किंतु इन अनुव्रतों के माध्यम से कर क्या रहा है, वो यही कर रहा है कि स्थूल का कम करना, स्थूल पाप का कम करना और सूक्ष्मता की ओर जाते जाना, ये उनका लक्ष्य है। और ऐसा करता करता जब वह अपने जीवन में 8 प्रतिमा धारण कर लेगा तो फिर तो पाप बहुत सारे कम हो जाते हैं। 8वीं प्रतिमा में नौकरी नहीं करता, व्यापार नहीं करता, सर्विस नहीं करता, क्या करता है, आदाय, नया जीवन जीने के लिए आदाय रूप जो मार्ग है उसको बंद कर देता और पूर्व में जो कमाया हुआ धन है उसमें संतोष धारण करता है, उसमें जीवन व्यतीत करने लगता है। तो ये सोचना है, ये अचौर्यानुव्रत हो गया। ब्रह्मचर्यानुव्रत, अपनी विवाहित स्त्री के अतिरिक्त सभी स्त्रियों के प्रति माँ, बहन और बेटी का व्यवहार रखना, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाता है। इसे स्वधार संतोष व्रत भी कहते हैं। दूसरी प्रतिमा ले लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले, ये कोई यहां नियम नहीं होता। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपत्ति भी नहीं, कर सकते हैं। दूसरी प्रतिमा लेने वाला आजीवन भी ले सकता है और स्वधार संतोष नामक जो यह व्रत है इसको भी धारण करके कर सके, इतना तो करना ही चाहिए, ये तो मूल है। क्योंकि पाप तो पाप है, कुशील पाप, इस पाप को ही वह कम करता हुआ अंदर 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 आना चाहता है। तो आने के लिए एक मार्ग है, सबसे पहला स्थूल पाप को छोड़ो, परस्त्री गमन त्याग, ये स्थूल पाप का पहला त्याग होगा। इसका त्याग कहाँ कराया? मूल गुणों में कराया, मूल गुणों में ही कराया। यहाँ पर स्वधार संतोष व्रत धारण करने के उपरांत और यह अंदर आता है, क्या करता है, जीवन पर्यंत भी ले सकता है, काल मर्यादा के साथ भी इस पाप का त्याग कर सकता है। इस प्रकार करता 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 वह पूरी तरह से इस पाप को जब कम करता है तो आजीवन ब्रह्मचर्य तो महाव्रत होता है, महाव्रत के समान ही है, वो पूरी तरह से कम कर लेता है। इस तरह अभ्यास करता हुआ आगे बढ़ता है। यहाँ पर स्वधार संतोष व्रत मात्र दिया जाता है। दूसरी प्रतिमा में परिग्रह प्रमाण अनुव्रत, पांचवा है, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन धान्य आदि पदार्थों की सीमा तय करके शेष का त्याग करना परिग्रह परिमाण अनुव्रत कहलाता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो 10 परिग्रह हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, वस्त्र और पात्र, ये 10 प्रकार के पदार्थ हैं, सोचता है अपने जीवन में, विचार कर लेता है कि मैं इसमें से कितना कम कर सकता हूँ। देखो 100 है, उसमें से एक भी कम करो तो वो व्रत ही है। शर्त नहीं कि 5 करो कि 50 करो, कितने प्रतिशत त्याग करो, ये शर्त नहीं, पर कम करना होगा। ये 10 परिग्रह हैं, इसमें से क्या और कितना कम कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। धन कितना रखना है, घर कितने रखने हैं, खेत कितना रखना है, सोना कितना रखना है, चांदी कितना रखना है, अपनी आवश्यकता को समझ करके रखना है, वस्त्र कितना रखना है, भांडी बर्तन कितने रखने हैं, नौकर चाकरों को कितने रखना है, सब विचार किया जाएगा और जो आवश्यक है उनको रख लिया, अनावश्यक को त्याग कर दिया। अब याद रखने की बात यह है कि जितना रखा है उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, जितना रखा है उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, उसमें कम करते हुए जाना है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जो त्याग होता है उसी का नाम व्रत है, बढ़ाने का नाम व्रत नहीं है, घटाने का नाम व्रत है। तो सोना कितना रखना है ये आप विचार कर सकते हैं, चांदी कितना रखना है विचार कर सकते हैं, तो रख करके 10 परिग्रहों को प्रमाणित करके आगे बढ़ना है, ये परिग्रह प्रमाण अनुव्रत है। यह हो गया, अब अपन 5 अनुव्रत हो गए, 3 गुणव्रतों के बारे में विचार करते हैं। गुणव्रत किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? जो अनुव्रतों की वृद्धि में सहायक होते हैं उन्हें गुणव्रत कहते हैं। अनुव्रत तो ले लिया 5 अनुव्रत, इन 5 अनुव्रतों के विकास में, वृद्धि में, इनके फलने फूलने में, इनकी रक्षा में जो कारण बनते हैं उनका नाम गुणव्रत है। इन गुणव्रतों को कैसे पालन करना तो इनका एक एक स्वरूप समझेंगे। गुणव्रत में भेद बनाए हैं, कितने? 3 भेद, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड, अनर्थदंड विरति व्रत, अनर्थदंड त्याग व्रत, विरति यानी त्याग। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड विरति व्रत, इनका स्वरूप समझेंगे। दिग्व्रत सूक्ष्म पापों से बचने के लिए दशों दिशाओं की सीमा बनाकर उससे बाहर नहीं जाना, बहुत अच्छा व्रत है। आप श्रावक धर्म को निभाते हैं, दूसरी प्रतिमा निभा रहे हैं, और त्याग में स्थूल पाप के त्यागी हैं, सूक्ष्म पाप का त्याग तो हुआ नहीं। लेकिन क्या श्रावक के जीवन में ये सर्वथा विचार किया जाए कि उनको असंभव ही है स्थूल पाप को त्यागना? ऐसा नहीं, स्थूल पाप को जैसा त्यागा है सूक्ष्म पाप को भी वो त्याग सकता है। सूक्ष्म पाप त्यागना ये असंभव नहीं है, संभव भी है। कैसा? तो देश व्रत के माध्यम, दिग्व्रत के माध्यम से त्याग करेगा। दिग्व्रत क्या कहलाता है? दशो दिशा में सीमा बना लेना। किसकी सीमा? मैं इस दिशा में, इस देश तक, देश की सीमा तक, इस देश की सीमा तक, इस दिशा में इस देश की सीमा तक, इस दिशा में इस देश की सीमा तक, मैं दिग्व्रत यानी दिशाओं के अनुरूप मैं क्षेत्र की मर्यादा करता हूं। तो कैसा? ये देश भारत, बाहर विदेश में जाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं यहीं रहूंगा, यहीं व्यापार करूंगा, यहीं उद्योग करूंगा, मेरा जीवन यहीं चलेगा, यहीं रहने वाला है, बाहर जाना आवश्यक भी मुझे नहीं है। तो अनावश्यक क्षेत्र को त्याग कर सकती कि नहीं? भारत छोड़कर बाहर जाना नहीं, यहां पर तो इसके लिए महत्व दिया जा रहा है, बाहर, भारत छोड़कर बाहर जाना नहीं। और लोग कहते हैं विदेश रिटर्न हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो किसी निमित्त से बाहर जाना नहीं, किसी भी निमित्त से बाहर जाना नहीं। किसके बाहर? देश के बाहर नहीं जाना। तो अपने देश में रह करके व्यापार करो, उद्योग करो, आओ जाओ, यात्रा करो, कोई भी करो, चल सकता है। लेकिन दिग्व्रत लेते समय ये आवश्यक है कि आप सीमा खींचे। स्वदेश की सीमा खींच लिया, स्वदेश बाहर, भारत के बाहर नहीं जाना, ये दिग्व्रत कहलाया। अब आपने ये व्रत लेने पर इतना बड़ा लाभ हो गया है, स्थूल हिंसा तो छूटा नहीं जो स्वदेश में नहीं छूट सकता। कहां? स्वदेश में स्थूल हिंसा जो होती है उसको तो छोड़ दिया, परंतु स्वदेश में स्थूल को त्याग कर व्रती बन करके सूक्ष्म को आपने त्यागा नहीं, त्याग भी नहीं सकेंगे। और क्षेत्र की मर्यादा होने पर जो को अपने आप ऑटोमेटिक त्याग हो जाएगा, बाहर के देश से न स्थूल हिंसा होने वाली है और न सूक्ष्म हिंसा होने वाली है। तो दिग्व्रत की अपेक्षा से देखो तो मुनि, महाव्रति मुनि जैसे रहते हैं ना, वैसा हो गया आप। अनुवृत्ति भी महाव्रति जैसा कहलाता है, क्योंकि बाह्य क्षेत्र का, स्थूल हिंसा का भी त्याग हो गया और सूक्ष्म हिंसा का भी त्यागी बन गया, इसलिए महाव्रत के समान दिग्व्रत कहलाता है। हैं? तो वो बात अलग, व्यापार उद्योग के निमित्त से यहां बताया जा रहा है, जिससे हिंसा होती है उसके निमित्त से बताया जा रहा है। आपके रिश्तेदार हैं, आपके बच्चे हैं, कोई बाहर है तो फोन आया, उठाने के लिए मना नहीं है। नहीं, व्यापार के दृष्टिकोण से बुलवाएंगे नहीं, अपने उपयोग के लिए बात अलग है, उपयोग के लिए बात अलग है। व्यापार उद्योग के हिसाब से ये मर्यादा दिग्व्रत दिया जा रहा है। आप व्यवसाय के दृष्टिकोण से दिग्व्रत लेंगे, अब अमेरिकन पेन भी आते हैं, जापानी पेन आते हैं, टीवी आता है, तो ये खरीद रहे हैं नहीं रहे हैं? आप खरीद रहे हैं ना, तो ये दोष नहीं आएगा आपको। अगर इसका वहां से ला करके यहां व्यापार करने लग जाएं और फिर भी दिग्व्रत लिया है तो दिग्व्रत भंग होगा, तो व्यापार नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी बात है कि वहां से आया हुआ भारत में, यहां पर होलसेल व्यापार एक होता है, वहां से खरीद करके आप बेच रहे हैं तो दोषी नहीं है, विदेश का माल है, जापानी माल है, और होलसेल व्यापार वाला वो व्यापार करने के लिए यहाँ आया और आप वहाँ जा करके अपने दुकान में रखने के लिए वो माल खरीदा, तो आप दोषी नहीं हैं। आप स्वयं डायरेक्ट वहाँ से बुला करके अगर व्यापार करने लगते हैं तो फिर आप दोषी हैं। तो ये दिग्व्रत कितनी अच्छी तरह से पाप से छुटकारा पाने के लिए कितना प्रशस्त मार्ग बताया आचार्यों ने, विचार करना चाहिए अपने को। ये विचार यदि नहीं आता है ना तो हमारे विचार कैसे रहते हैं, या तो अति रहते हैं या तो इति रहते हैं। हाँ, ये मध्यम मार्ग तो मालूम ही नहीं है, या तो अति में विचार रहते हैं या तो इति में रहते हैं। विचार ये ऐसे होते हैं ना, दिग्व्रत ले लिया तो क्या होगा, वहां से माल भी जापानी पेन वगैरह आते हैं, ये दुकान में नहीं खरीद सकते हैं, स्वदेशी माल ही खरीदना पड़ेगा, ये अति विचार है। समझाया क्या जा रहा है यहाँ, व्यापार के दृष्टिकोण से तुम स्वतः बाहर की वस्तुओं को बुलाओगे नहीं और यहां से भेजोगे भी नहीं, तो संबंध रहेगा व्यापार का, संबंध भेजोगे तो व्यापार का संबंध रहेगा, बुलवाओगे तो इस व्यापार का संबंध रहेगा। ये भर नहीं करना है आपको, इतना भर नहीं करना है, तो पेपर क्यों पढ़ते हैं? नियम ले रखा है क्या, उठते ही एक घंटा स्वाध्याय करेंगे सकाल का? वृत्ति पेपर नहीं पढ़ता, क्योंकि उसको पढ़ने से विकल्प हो सकते हैं, वृत्ति को उनका ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए। बस आपके काम की चीजें पढ़े वो बात अलग है, परंतु पूरा पेपर पढ़ लिया और जो नहीं पढ़ना चाहिए वो भी हेडिंग सहित डिटेल पढ़ लिया तो विकल्प तो होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। पेपर कटने पढ़ने का मना नहीं है, लेकिन आपके लिए व्रतों के लिए जो प्रतिकूल विषय हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो संसार के घड़ा मुड़ी हैं। ये दिग्व्रत, दिग्व्रत का समझ में आ गया, कोई शंका? वही तो कह रहे हैं ना, व्यापार के उद्देश्य से दिग्व्रत लेना है, वही तो हम कह रहे हैं। पेन वहां से सुनो, सुनो पहले अच्छी तरह से सुनो, पहले व्यवस्थित समझो उसको। कोई वहां से दूसरा व्यापारी पेन खरीद के लाया या वहां से बुलवाया और आपके लिए बेच दिया, आप खरीद सकते हैं, किंतु आप डायरेक्ट संबंध विदेश से नहीं रखेंगे, क्योंकि व्रत हो गया है। अथवा आपके माल को, सुनो व्यवस्थित सुनो, अथवा आप पेन के व्यापारी हैं या पेन के फैक्ट्री हैं, आपकी पेन तैयार होते हैं, आप विदेश में बेच नहीं सकते क्योंकि संपर्क करना पड़ेगा, व्यापार के उद्देश्य से विदेश का कोई संबंध नहीं रहेगा, जो कुछ भी व्यापार चलेगा स्वदेश में चलेगा, माल कोई चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, आपका व्यापार का जो कार्य चलेगा वो स्वदेश में चलेगा, ऐसा वो विषयांतर है बाद में पूछना। व्रतों का स्वरूप समझाया जा रहा है, देश व्रत, देश व्रत दिग्व्रत में ली हुई मर्यादा को घड़ी घंटा दिन आदि तक नगर मोहल्ला चौराया आदि की सीमा बनाना देशव्रत कहलाता है। दिग्व्रत ले लिया तो दिग्व्रत लेने से देश की सीमा बन गई अपने आप, बाहर नहीं जाएंगे तो स्वदेश की सीमा रह गई। अब इस स्वदेश की सीमा में भी आपको सोचना चाहिए कि हर दिन देश के हर कोने में तो जाओगे नहीं, क्या जाओगे? हाँ, आज के दिन या कल के दिन, हर दिन इसका नियम लिया जाता है। आज के दिन मैं व्यापार के लिए जाऊंगा तो किस गांव के लिए जाऊंगा, किस सीमा तक जाऊंगा, देश की किस सीमा तक, किस गांव तक, इसका संकल्प उसी दिन लेना चाहिए। आज हम बाहर नहीं जाएंगे, सुबह उठ करके आवश्यकता समझो कि आज कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, आवश्यकता को समझते हुए संकल्प ले लो कि मुझे दिन भर कोल्हापुर को छोड़ करके बाहर नहीं जाना। ठीक, ये देश व्रत कहलाता है। दिग्व्रत में स्थूल और सूक्ष्म दोनों हिंसा छूट गई। अब यहाँ देश में भी, बहुत बड़ा देश है, हर जगह तो नहीं जा रहे हैं, तो इसमें भी स्थूल और सूक्ष्म दोनों हिंसाओं को छुड़ाने के लिए मर्यादा रोज करो, ये समझाया जा रहा है। रोज मर्यादा करो, क्या आज कोल्हापुर छोड़ करके बाहर जाना आवश्यक नहीं है? तो नहीं है तो कोल्हापुर को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, ये संकल्प लेना, ये देश व्रत है। या जाना आवश्यक है तो उस दिन वहां तक का संकल्प करो कि मुझे आज मुंबई तक जाना है, तो आज मुंबई तक, मुंबई भी भारत में ही है। आज मुझे कश्मीर तक जाना है तो कश्मीर तक, आज मुझे पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना है, बिल्कुल जा सकते, तो उसके उस सीमा को उल्लंघन नहीं करेंगे। तो किस हेतु से जाएंगे? कोई काम आने पर ही तो जाता है व्यक्ति, किसी का जन्म मरण का प्रसंग, या तो व्यापार उद्योग आदि का प्रसंग, इनको छोड़ करके क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जा सकते हैं, आ सकते हैं। क्षेत्र दर्शन भी होता है, क्षेत्र दर्शन भी होता है, और साथ साथ व्यापार भी करना हो तो करके आओ। हाँ, क्षेत्र दर्शन ही व्यापार है, लेकिन वो समझ में आना चाहिए ना, क्षेत्र दर्शन ही व्यापार है। तो केवल क्षेत्र दर्शन करके हम व्यापार में कम इंटरेस्ट लेते, लेकिन होता कहाँ है, दोनों करना पड़ता है। ये देश व्रत है, सरल है ना, समझ रहे हैं? दिग्व्रत कितना सरल है, भारत छोड़ करके भागेंगे क्या बाहर? नहीं, तो इतना तो कम से कम लो। देश व्रत, रोज सुबह उठ करके हमको कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना संकल्प ले लिया, जहां तक जाना आवश्यक है वहां तक का ले लिया, बाकी का त्याग। रोजाना रोजाना मन में ही लिया जाता है, मंदिर या उसमें कोई जरूरत नहीं है, मन ही साक्षी है। मन में देव शास्त्र गुरु को साक्षी बना लो और बस, मैं बाकी का त्याग करता हूँ और इतना रखता हूँ, आने जाने का रास्ता इतना खुला रखता हूँ, बाकी बंद करता हूँ। ये हाँ ठीक है, धर्म कार्य के लिए तो जा सकते, धर्म कार्य के लिए बाधा नहीं है। जैसे मान लो, जैसे मान लो आज सुबह उठ गए आप, सुनो सुनो सुनो, सभी उठ गए, सुबह उठ गए और संकल्प ले लिया कि मैं कोल्हापुर छोड़ करके बाहर नहीं जाऊंगा। ये किस उद्देश्य से लिया? आपके अपने घर के हिंसा के कार्यों के कारण से लिया है, धर्म के उद्देश्य से नहीं लिया है। धर्म के उद्देश्य से लिए तो कहीं तक भी आपको छूट रहेगा। कोई मुनि महाराज की समाधि हो रही है तो समाधि में भाग ले सकते हैं, कोई आवश्यक धर्म धार्मिक कार्य है तो उसमें भाग ले सकते हैं जाकर के। सिर्फ आपको सांसारिक उद्देश्य को बना करके त्याग कराया जा रहा है, धर्म के उद्देश्य से नहीं। जैसे विदेश में कोई धार्मिक व्यक्ति है आपका, और वहां पर यहां से वहां गया है, चौथा गुणस्थान वर्ती है, प्रतिमाधारी नहीं है, तो गया है वो, और आपका संबंधी है, आपका बेटा है, धार्मिक है, तो धर्म की चर्चा आप कर रहे हैं, मोबाइल से धर्म की चर्चा हो रही है, गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है? सही हो रहा है ना, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हाँ ठीक है ना, व्रत ही माना जाता है, क्योंकि हिंसा के दृष्टिकोण से चातुर्मास में त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा चलने से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए विहार बंद करते हैं, तो 4 महीने तक एक जगह रहते हैं अहिंसा के दृष्टिकोण से। हाँ उसका लाभ आप लोग उठाते हैं ये बात अलग है, और लाभ हो भी रहा है, कितना लाभ, 27 नक्षत्र जग गए। अनर्थ दंड विरति व्रत, ये तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, निष्प्रयोजन पाप के कार्यों से विरक्त होना अनर्थ ध्यान दंड विरति व्रत कहलाता है। निष्प्रयोजन, प्रयोजन है ही नहीं, ऐसे कार्य भी हम बहुत सारे करते हैं, निष्प्रयोजन बहुत सारे कार्य करते हैं और ध्यान में नहीं आता कि ये निष्प्रयोजन था और हो वो कार्य हो बैठा और उससे पाप का बंध तो हो गया। जैसे गर्मी के दिन हैं और पंखा शुरू है, आवश्यक है, आपने आवश्यक रूप से ही पंखा लगाया है, जब जब आवश्यक पड़ेगा पंखा लगाएंगे, हवा लेंगे तो ठीक, इसका त्याग नहीं है, हवा लेना था 1 घंटा बैठ गए और जाना था कहीं बाहर और बंद करके नहीं गए और शुरू रहा, किस हिंसा की कोठी में आई गई, अनर्थ दंड। तो ऐसे अनर्थ दंड को नहीं करना, प्रमाद छोड़ करके काम करना, बाहर जा रहे हैं तो हिंसा से भयभीत रहना, मेरे आने तक अनर्थ ना हो, पाप ना हो, इसलिए तुरंत बंद कर लिया, चले गए। जब जितना आवश्यक है उतना ही काम करने का नाम अनर्थ दंड विरति व्रत। ये हर चीज में सोचना, और ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो प्रतिमा लेता है उन्हीं को सोचना चाहिए, प्रतिमा जो नहीं लेते हैं वो भी तो इसका पालन कर सकते हैं, चतुर्थ गुण स्थान में भी यदि हैं तो हिंसा से आप बच सकोगे कि नहीं, तो बच ही रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, वो पुण्य किसको लगने वाला है, वो धर्म किसको होने वाला है, स्वयं को, लाभ तो स्वयं को होना है। हाँ नहीं, वो भी भाव रहना चाहिए ना, बिजली का बिल जो है ज्यादा आता है इस दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए, गलत नहीं है, क्योंकि आप जो धन कमा रहे हैं, धन कमाते समय पाप होता है और ज्यादा बिजली में धन देना पड़ेगा, ये देने का संदर्भ है, तो धन उतना और कमाओगे आप और पाप करना पड़ेगा, तो वहां पर भी वही उद्देश्य है कि बिल भी, हाँ बिल भी ना आ जाए और हिंसा भी ना हो, दोनों धर्म ही है वो। बिल अधिक ना आ जाए ये सोचना भी धर्म ही है दोनों तरफ से, तो ये अनर्थ दंड विरति व्रत है। अब रह गए, हाँ इसमें अनर्थ दंड विरति के 5 भेद बताए गए हैं। देखो पहला वाला पापोपदेश, खोटे व्यापार आदि पाप क्रियाओं का उपदेश देना, खोटे व्यापार आदि का उपदेश देना कि तुम उसका व्यापार करो, इसका व्यापार करो, जिसमें अधिक हिंसा है उसका उपदेश नहीं देना, जैसे रेशम की खेती करो तुम, बहुत बड़ा लाभ होगा, मार्गदर्शन दे रहे हैं दूसरे को, जिसमें ज़्यादा लाभ है और हिंसा भी है तो उसको देने की जरूरत नहीं, खोटे हैं वो, खोटे का मतलब जिससे अधिक पाप का बंध होता है, वो खोटे व्यापार आदि का उपदेश वृत्ति नहीं देता, पापोपदेश नहीं देगा, ये उसको सब में सोचना चाहिए, सब में चिंतन करना, कैसा चिंतन करना, जिसमें पाप है और हम उसका उपदेश दे रहे हैं, पाप से भयभीत रहते हुए उसका उपदेश देने से बचने का ही प्रयत्न करना चाहिए। देना बहुत आवश्यक हो गए तो बात अलग है, वो तो अनिवार्य के कोटि में आता है, वो पापोपदेश में आएगा भी नहीं। परंतु व्रतों को ख्याल में रखते हुए अगर नहीं चलेंगे तो पापोपदेश भी होगा, पापोपदेश नहीं देना। हिंसादान, हिंसक अस्त्र शस्त्रों का आदान प्रदान करना, ये हिंसादान है। हिंसक अस्त्र शस्त्र जिससे, हाँ, चाकू, तलवार, बंदूक आदि, ये अस्त्र शस्त्र, खुरपा, कुलाड़ी, नहीं यहाँ क्या कह रहे हैं, दान, बेचने का नहीं कह रहे हैं, दान। आपके पास अस्त्र शस्त्र वगैरह हैं, उसको किसी को देना नहीं। जैसे आपके पास कुलाड़ी है और दूसरा कोई मांगने के लिए आया है कि मुझे जरा कुलाड़ी चाहिए आपका, तो आप दे नहीं सकते, वो स्वयं उठा करके ले जाता है और आप कुछ नहीं कहते तो बात अलग है। वो स्वयं उठा के ले आया और ला करके रखा तो बात अलग है, परंतु मांगने आया, पूछ रहा है, तो उठा करके अपने हाथ से आप नहीं दे सकते, क्योंकि उससे ले जा करके वो पेड़ काटेगा, हिंसा करेगा, पृथ्वी खोदेगा, कुछ भी करेगा, मतलब हिंसा का ही साधन है वो, तो आप अपनी हिंसा तक ही सीमित हो गए हैं। आपने भी उसको रखा है, हिंसा करने के लिए ही रखा है, हिंसा होती ही है, लेकिन अपना जीवन संबंधित जो हिंसा है ये हमारे लिए आवश्यक है, उस आवश्यकता से तो हम बच नहीं सकते। तो अपन ने ये अस्त्र शस्त्र वगैरह अपने लिए रखा है, ये दूसरे के लिए नहीं, तो दूसरे के लिए नहीं रखा है तो दूसरे को देना भी नहीं। व्रति इन चीजों को दूसरे के लिए नहीं रखता, वो खुद के लिए रखता है। हाँ, संदर्भ ये है कि वो मांग रहा है तो हम क्या कहें, मौन रहे क्या, मौन ही रहना, और फिर भी वो ले जाता है और रखता है ला करके, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दोष नहीं लगेगा। उनको बता देना चाहिए कि हम इनको दे नहीं सकते क्योंकि इनको देने का त्याग है, और फिर भी आप ले जाते हैं और रखते हैं तो हम इसके लिए अनुमोदक नहीं हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम आपको दे नहीं सकते, ले जाओ ऐसा कह नहीं सकते, ये उनको बताया जा सकता है। मांगने आते तो हैं लेकिन उसमें आप उठा करके दे नहीं सकते और कह भी नहीं सकते कि इसको ले जाओ, सिर भी हिला नहीं सकते कि हाँ ले जा सकते। मैं ले जाऊं क्या, ले जाऊं क्या पूछ रहा है, इतना भी नहीं कर सकते आप, इतना भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, गाड़ी भी अस्त्र शस्त्र की बात चल रही है, गाड़ी भी एक साधन ही है जो आने जाने का है, त्रस जीवों का घात होता है, त्रस जीवों का घात उसमें भी आता है, लेकिन फिर भी आपको बचना है। सवाल यह है कि आप कितने बच सकते हैं, कितने अप्रमत्त हैं, अप्रमत्त बनकर के हमको रास्ता निकालना है। कोई मांगने के लिए आया है तो उस मांग की पूर्ति आपको अपने कृतकारित अनुमोदना से नहीं करना है, वो स्वयं ले जाता है तो बात अलग है, लेकिन कृतकारित अनुमोदना नहीं होना उसमें। हाँ, तो ऐसी चीजों को अनुमोदना, काया अनुमोदना हो गई, वो ताले में रखा है, चाबी फेंक दी। हाँ, तो ऐसी चीजें जो बिल्कुल चल नहीं सकती उनको तो छोड़ने के लिए नहीं बताया जा रहा है। हाँ, जो आप जिससे बच सकते हैं उनसे बचने का संकल्प लिया है, क्योंकि संकल्पी हिंसा का त्यागी हैं आप, उद्योगी हिंसा का नहीं, समझ गए ना। हाँ। तो ये सभी चीजें देख करके और सुन करके ऐसा नहीं विचार करना कि ये प्रतिमा तो बहुत कठिन है, ये गलत है, ये गलत है, अति सोच रहे हैं इसलिए प्रतिमा भारी लग रही है। तो आचार्यों ने यहां भारी होता तो आपको उपदेश भी नहीं देते। ये गृहस्थ अवस्था में रह करके ही संभव है इसलिए तो दिया है ना। वो कैसा संभव है? जिसको जिस स्तर पर संभव है उस स्तर पर वह पालन करता है। हर एक अलग अलग हो सकता है, ऐसा तो नहीं है एक एक गाड़ी भी नहीं देता और अस्त्र शस्त्र भी नहीं देता। तो उनको देखा देखी, आप भी ये कहो कि वो गाड़ी नहीं देता और मैं गाड़ी दे रहा हूं तो मुझको दोष लग रहे हैं, ऐसा नहीं सोचने का। आपको नहीं चलता उसमें, उस संबंधी संकल्पी हिंसा का त्याग आपका नहीं है। और जिसमें चल रहा है, जिसका व्रत का, जिसमें आपका व्रत पालन हो रहा है, उसमें आपका संकल्पी हिंसा का त्याग है। हाँ, कारोबार भी हो सकता है, व्यापार ही हो सकता है उसका, गाड़ी मोटर का व्यापार हो, व्यापारी हो। तो अपने स्तर पर दूसरी प्रतिमा होती, सबका एक सा नहीं। और कोई खेती करता है और जिसका खेत भी ना हो और कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र का व्यापार भी ना हो और वो भी ना हो गाड़ी मोटर का, तो ऐसा भी व्यापारी हो सकता है। तो अपने स्तर पर पालन करना, ये प्रतिमा है। हाँ हाँ, केमिकल किस टाइप के? पॉइजन। हाँ, वही तो सोचना है ना। ये देखो, उद्योग है आपका, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं है। नहीं, सुनो सुनो सुनो, पहले उद्योगी हिंसा का तो त्याग नहीं है, किंतु उसमें आप संकल्पी हिंसा से बच सकते हैं क्या नहीं, ये आपको सोचना है। अगर बच सकते हैं तो अवश्य उसको त्याग देना चाहिए, जीवन पर्यंत त्याग। और नहीं बच सकते हैं तो यथाशक्ति त्याग करो और यथाशक्ति उसको रखो। उसमें कुछ न कुछ मर्यादा करने का ही सोचना चाहिए। ये है, थोड़ा बहुत तो ब्रेक लग सकता है कि नहीं? गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है क्या? गाड़ी में ब्रेक तो है तो जितना लग सकता है उतना तो जंजीर खींचना ही है। ये दूसरी प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा आंशिक रूप से लेकर वो 100 तक जाएगा। आप उसमें कितने प्रतिशत पालन कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपके उद्योग धंधे को देख करके, परिस्थिति को देख करके, संदर्भ को देख कर। पर बचने का संकल्प आंशिक रूप से तो होता ही है ना। तो क्या करना, वो भी एक आपका व्यवसाय उद्योग ही है, देना देना पड़ता है, हो रहा है ना। तो मन न होते हुए भी दिया जा रहा है, ये पाप की अनुमोदना, तो पाप का अनुमोदना तो हो ही रहा है। अब इसमें क्या करने से हम बच सकते हैं उसका चिंतन करना चाहिए। हाँ? नहीं, वैस किसी को, किसी के लिए कुछ दे रहे हैं तो खा पी करके अपना जीवन चलाता है, उसका दुख दूर होता है तो बात अलग है। उसको लेकर के वो व्यसनी बनने लग गया, तो आपके धन का समर्थन हुआ व्यसन में, तो आपके मूल गुणों में भी दोष आएगा। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, आपको चिंतन करके बचना चाहिए, वो स्वयं का प्रश्न है। हाँ, हो गया। हाँ, उस उद्देश्य ही सोच करके करना चाहिए। किसी भी संबंध में देखो, किसी भी संबंध में आप किसी भी कार्य के, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, किसी का मिलिट्री का है, किसी का वो है, किसी का ये है, सब में आप कितना बच सकते हैं उसमें, वो रास्ता निकालना है, उसका त्याग करना है। त्याग महत्वपूर्ण है, उसमें से कितने अंशों में आप बच सकते हैं। नहीं बच सकते हो तो बात ही अलग है, उसको छुड़ाया नहीं जाता, परंतु किस क्षेत्र में कितना आप बच पाते हैं सोचकर उसको, उससे बचना, ये पंचम गुण स्थान है। हर चीज में सोचा नहीं जाएगा कि इसमें भी बचना चाहिए क्या, इसमें भी, हर चीज में बच नहीं सकते आप, कुछ चीजों में बच सकते हैं, कुछ चीजों में नहीं बच सकते। यदि बच सकने की संभावना है तो बचना ही चाहिए, वो संकल्पी हिंसा का त्याग है। जिससे आप बच गए वो संकल्पी हिंसा का त्याग हो गया, वो पंचम गुण स्थान हो गया। ये ऐसा है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे।